نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیے اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق. سورۃ ہود آیت نمبر 50. قوموں کے قصوں میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے سن چکے جس میں حقیقت میں بہت کچھ تھا ہمارے لیے. اگر ہم نے لینا ہوتا تو ہمیں مل چکا ہوتا, اور اگر ابھی ہم نے نہیں لیا تو انشاءاللہ ہم ان قصوں کو سنتے ہوئے اپنے حالات کو بھی دیکھتے رہیں گے. اب یہاں سے قصہ ہے قوم عاد کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں, تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو, وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا, اور مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. بہت خوبصورت طریقہ انبیاء کرام کے دعوت دینے کا. اس میں ہمارے لیے چند باتیں, اور وہ کیا ہیں کہ ہر نبی کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ قوموں میں خرابیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں لیکن دعوت کا نقطۂ آغاز اللہ کا بندہ بننے سے ہے. کیونکہ جب شعوری طور پر کوئی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر خاندان اس کے لیے بت نہیں بنتا, بچے, معاشرہ اور وقت کے تقاضوں کے نام پر وہ اللہ کے دین کو بدلتا نہیں ہے. تو آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر بت سے پاک کر دے. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ہیں, کسی کے لیے تعریف, کسی کے لیے تنقید, کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتا دی گئی کہ دین کا کام جو ہے وہ پروفیشنلی کریں گے تو ہی خیر پہنچے گی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ استغفار کے فوائد بھی قوم کو بتا دیے کہ جب قوموں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ آج امت مسلمہ جس دو راہے پہ کھڑی ہے وہاں بھی اب اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کے سارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیس کریں اور بہترین طریقے سے اس میں مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے. قوم کا جواب سنیے گا, اللہ کے نبی کتنی پیاری بات کرتے تھے اور قومیں کتنے بیکار طریقے سے اس کا جواب دیتی تھی. قال یا ہود ما جیتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. انہوں نے کہا ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا, اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. 3 سیکنڈ تک آپ ان کے ان جملوں پہ غور کیجئے اور خود سے پوچھئے, میں بڑے تپاک سے کہیں درس دینے گئی, لوگوں کو اللہ کی بات بتانے گئی, اور جا کے لوگوں نے ان کے منہ سے یہ باتیں سننی پڑی. ہم بالکل نہیں سنیں گے, ہمیں تو آپ کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی, جو مرضی کر لو ہم نہیں مانیں گے, اور ہمیں تو لگتا ہے تم پہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا یا تمہیں کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہم تو روتے دھوتے آنسو پوچھتے چیزیں اٹھا کے بھاگیں گے اور آ کے کہیں گے آج کے بعد میں درس نہیں دوں گی, کیونکہ ہم تو تعریفیں سننے جاتے ہیں نا, ہم تو وہاں سے داد وصول کرنے جاتے ہیں. یاد رکھیے جب بھی کبھی آپ کسی دین کے کام کے کرنے کے جواب میں تنقید سنیں اور کام چھوڑ دیں, اور تعریف سنیں اور کام تیز کر دیں تو خطرے کی علامت ہے. پھر آپ حق کے لیے نہیں گئے, پھر آپ یا تو نتائج کے لیے گئے یا اپنی ذات کے لیے گئے. بہت سارے لوگوں کو دین کا کام کرنے کے دوران اس کا پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری نیتوں کے قبلے درست فرما دے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں. آپ ذرا صبر دیکھیے نبیوں کا, اور یہ کوالٹی انسان کو اللہ کے راستے میں جماتی ہے. اور جو بے نیاز ہوگا نا مخلوق سے, اس کو لوگوں کی تعریف اور تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, خوشی ضرور ہوگی اللہ کے بندوں کو دین کی طرف آتے اور اس کی قدر پہچانتے, لیکن اپنی ذات پہ اس کو نہیں لے گا. تو حضرت ہود کا جواب, کہنے لگے میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک کر رکھا ہے میں اس سے بیزار ہوں. یہ کہنے کی ضرورت ہے, तुम्हें मेरे तरीके नहीं पसंद तो मुझे कौन से तुम्हारे तौर तरीके पसंद है। ये नहीं कहा कि अच्छा जब पूरी सोसाइटी ये काम कर रही है तो फिर मैं इसको क्यों ना करूं और फिर मैं अपने आप को क्यों पीछे रखूं। नहीं कहा जो तुम करते हो करो, वही बात कि इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम वाली बात नहीं कही। कहा जो तुम करते हो करो, तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हारे तौर तरीके और इन मामलात से पीछे हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर न रखो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। क्या पता चला कि जब तक दाई दीन का ये अकीदा नहीं होगा कि नफा और नुकसान, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, तब तक वो लोगों की बातों को सुनकर उसका जवाब नहीं दे पाएगा और वो उसमें परेशान होगा। यही बात हमें अपने ऊपर रखनी चाहिए। जब हम लोगों के प्रेशर में आते हैं ना, फिर बातों को बदलते हैं। देखिए, कुछ दीन की बात करने वाले वो होते हैं जो कहते हैं लोगों को खुश रखो, कुछ कहते हैं कि हिदायत देकर आनी है। आज आप इमेजिन कीजिए, आप गए कहीं और आपको कोई चीज देनी थी। पोस्टमैन की मिसाल ले लेते हैं। पोस्टमैन का काम क्या है कि उसको पे इस चीज की मिलती है कि वो वहां जाके दरवाजा नॉक करेगा, दरवाजा खुले ना खुले फिर एक और बेल करेगा, नहीं है तो एक नोटिस लगा के आ जाएगा कि डिलीवरी आई थी लेकिन आपने रिसीव नहीं की। वापिस आएगा पोस्टमैन जब अपने पोस्ट ऑफिस में उसको पे मिल जाएगी। कोई उसको इस पे पैसे नहीं काटेगा कि तुम्हारे हाथ से उन्होंने लिया क्यों नहीं। बात वाजे। अब अगर किसी पोस्टमैन की पे इस बात पे हो कि हर वो पैकेज जो डिलीवर हो गया उसको मिल गया, उसको उसके पैसे मिलेंगे, अब मुझे बताइए कि उसका एटीट्यूड फर्क होगा? ऑफ कोर्स फर्क हो। वो दरवाजा पीटेगा, दरवाजे नॉक करेगा, इधर नेबर से पूछेगा, उधर फोन करेगा। नतीजा क्या होगा कि जिसको वो ढूंढ रहा है हो सकता है वो फ्रेंड हो जाए, वो मिले ना, और ये महरूम समझेगा। आप और मैं अपने ऊपर लेते हैं, हम एक पोस्टमैन के दर्जे पे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको इस उम्मत में डालकर क्या काम दे दिया? यू नीड टू कन्वे द मैसेज, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कन्विंस देम। अगर हम उनको कन्विंस करने चाहेंगे, इतना बड़ा खतरा है कि हम उनके लिए मौजू को नरम कर देंगे, क्योंकि पैसे ही तब मिलने हैं जब लोग कन्विंस होंगे। फिर लोग कहेंगे हाउ मेनी पीपल डिड एक्सेप्ट दैट, ओके चलो इसको इसकी पे दे देते हैं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं जो अपने जिम्मे ये बात ले लेते हैं कि हमने लोगों से मनवा के आना है। फिर वो मनवाने की सूरत में लोगों का पसंदीदा वर्जन पेश करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ये अच्छा है, ये नहीं करो वो नहीं करो, और जो ऐसा पेश करे उसको मीडिया बहुत प्रेजेंट करता है। वो कहते हैं माशाल्लाह यही लोग हैं कि जो लोगों को खुश रखेंगे। तो कभी इस बात की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ना लें कि मैंने लोगों को हिदायत दे के आनी है या मैंने लोगों को कन्विंस करके आना है। लेना है तो यही लेना है, नहीं लेते तो मुझे क्या। याद रखिए एक जुमला दीन के में बहुत आपके काम आएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका आई और शादी हुई, और हमारे एक बहुत अच्छे अंकल हैं जो मशाल आलम दीन है, उन्होंने एक नसीहत मुझे की थी, क्योंकि पाकिस्तान में रह के लोगों के जहन में उस दौर में खास तौर पर यही था जो अमेरिका जाता है वो बिगड़ जाता है, ऐसी एक अजीब सी बात कैफियत है। तो किस्सा मुखसर के उनकी वो बात मुझे याद आई, उन्होंने कहा कि बेटा किसी की हिदायत के लिए खुद गुमराह ना होना, और उसमें मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था कि ये सोच करके अब चलो दूसरे तो खुश हो जाएंगे, चलो मैं थोड़ा अपना अमल ढीला कर लूं, चले वक्त के तकाजे, चले माहौल के तकाजे, चलो लोगों को खुश रखो तो वो तो मुझसे खुश हो जाएंगे लेकिन मैं गुमराह हो जाऊंगी। तो ये असूल गिरा से बांध ले, अंबिया कराम की दावत में ये दिखने, जो करना है कर लो मेरे खिलाफ, जाओ मुझे मारो, जाओ मेरे खिलाफ ढूंढो लोगों, जो मर्जी करो, मेरा ईमान है कि कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो, बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो, जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका, दैट्स इट। यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। ये है थॉट प्रोवोकिंग इन सेंटेंसेस, शौर को बेदार करें, हथौड़े बरस रहे उनके कि नहीं मानते तो देखना अब तुम्हारे दिन गिनेंगे। क्योंकि जिस कौम ने अपने नबी की दावत को ठुकरा दिया, ये इस बात का ऐलान होता है कि बस अब तुम गए और तुम्हारी जगह दूसरे आएंगे, और यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। और फिर वही हुआ क्या? अब जरा आप अपने जिन को इन स्टोरीज के साथ रखें, जो आ रहे हैं आने दें प्लीज, मत अपनी नजरों के साथ उनका वेलकम करें, और देखें हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त। ये वो सबक हैं जो उम्मत वसत को इस वक्त पढ़ने की जरूरत है। पिछली कौमों के हालात में हमारे अपने लिए सबक है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और इन लोगों को जो इनके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब से इनको बचा लिया। ये होता है, हमेशा हक वाले जीतेंगे। थोड़े कम है, दबे में, लोगों ने उनके कई नाम बना दिए, लेकिन आफ्टर ऑल द रिजल्ट जो है ना वो हक और सच वालों का होता है। दीन को डाइल्यूट करके, लोगों की मर्जी का करके पेश करने वाले, याद रखिए कि चंद दिन के बाद लोग भी उनसे थक जाते हैं। मतलब आप देखिए कि सादा दूध आप रोज पी लेंगे, लेकिन आप एक खास फ्लेवर डाला हुआ दूध 2-4 दिन पियेंगे, फिर आपका दिल भर जाएगा, फिर आपको नया फ्लेवर चाहिए होगा, फिर आप उसके तीसरे दिन कोई और फ्लेवर चाहेंगे। इसलिए आप देखिए कि हमारी बेसिक चीजों में फ्रूट, सब्जियां, दालें जो नेचुरल हम रोज ही खाते हैं, हम कभी आज तक नहीं कहते कि रोटी नहीं अब खानी, दिल भर गया, चावल नहीं खाने, एक दो दिन ना मिले तो हमारी तसल्ली नहीं होती, ऐसे ही है ना। इसके बरक्स जो स्नैक्स टाइप चीजें होती हैं, जंक है, वो हम थोड़े दिन के बाद थक जाते हैं। जो प्योर दीन होता है ना उसे बंदा थकता नहीं है। जिसको आप दीन का एक टेस्ट दे देंगे ना, कुछ दिन बाद वो कहेगा अब कोई नया दीन लाओ। सूरह यूनुस को याद कर ले कि लाओ या तो इस कुरान को बदल कर या कोई और ले आओ। तो अल्लाह ने यही सिखा दिया, लोग सारी दुनिया एक किनारे पे चली जाए, तुमने अल्लाह का दीन नहीं छोड़ना, फिर कामयाबी है। और आज भी मुसलमानों को सच्ची खुशी उसी वक्त मिलेगी जब हम आज भी सहाबा कराम के तरीके से कुरान को लेंगे, अल्लाह के नबी को लेंगे, और अल्लाह ताला ने देखिए कैसे उनको बचा लिया, और इसके साथ दूसरे भटके गए किस तरह से। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से खुद को और इन लोगों को जिसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब से इनको बचा लिया। ये हैं आद, अपने रब की आयात से इन्होंने इनकार किया, इसके रसूलों की बात न मानी, और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। 3 बड़े बड़े जुर्म है, क्या एक एक उनके खिलाफ चार्ज लिस्ट लिखी जा रही है आखिरकार दुनिया में भी इन पर। अब देखिए अल्लाह ने इनको क्या नुक सजा दी, आखिरकार दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और कियामत के रोज भी। सुनो आद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग, यानी रहीम के दर से रजीम बनकर निकले। जहां से अल्लाह का रहम मिल सकता था वहां से अल्लाह की पकड़ लेकर चले, और इसी तरह से फिर एक नई कौम के लिए रास्ता बन गया। कौमों के अरूज और जवाल में आज उम्मत मुस्लिमा को अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल देखना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगली स्टोरी सुनिए, नियत कीजिए मैंने A to Z फोकस होके एक एक लफ्ज पे गौर करना है, फिर आपको इसमें से मोती मिलेंगे, अदरवाइज तो ये सिर्फ स्टोरीज हैं। खाली स्टोरी से कुछ नहीं होता जब तक उसमें से मैसेज ना लिया जाए। और आप तक को पता है कि कुरान पाक में से गालिबन 250 आयात ऐसी हैं कि जो सिर्फ स्टोरीज के ऊपर है, जिसमें किस्से हैं, कसस है और इस तरह से चीजें हैं। तो क्या अल्लाह ने इतनी कीमती किताब, इतनी ज्यादा ऑथेंटिक किताब एक एक लफ्ज पे दस्तस नहीं किया, उसमें ये कहानियां के खाना पूरी के लिए डाल दी? क्या अल्लाह को सिर्फ पेजेस पूरे करने थे? जो मौजू कुरान में बार बार आता है, तस्कीर है उसमें, उसमें यकीनन मैसेज है। और आज उम्मत वसत को इन कहानियों को पढ़ने की जरूरत है, इसको आज एक नए एंगल से सुने। हर साल दौरे कुरान में हम ये पढ़ते हैं, इस साल आप इस सोच से सुनिए उम्मत वसत को अल्लाह ये कहानियां क्यों सुना रहा है। और हम इनमें से हर कौम से अगर अपना एक एक जुर्म भी जमा करते जाएं तो इंशाल्लाह हम उसे इबरत लेते हुए हम वो छोड़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर दिन बदल देगा, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वइला समूद अखाहुम सालिह, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालिह को भेजा। उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया, बस तुम इससे माफी मांगो। क्या पता चला कि अल्लाह ने तुम्हारे इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारे बेसिक राइट्स दिए, तुम्हें सब कुछ दिया। ये तो नहीं कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हो और अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे बनो, तो तुम कहते हो मैं क्यों बनूं, मुझे दिया ही क्या है। कहा नहीं, उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, और हकीकत है ये दुनिया एक बहुत बड़ा घर है, इसीलिए फरमाए बस तुम इससे माफी चाहो। अब जो कमी बेशी की है उसको अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त करो अपने मामले को, और इसकी तरफ पलटाओ, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। आप देखिए नबियों के दर्द को महसूस करें, भटकती हुई कौमें, जिसको कहते हैं कि शुतर बेमुहार कौमों को नबी कहते हैं, वापिस आ जाओ रब की तरफ। और यही मैसेज अल्लाह के नबी ने अपने दौर में दिया था, इलैया मेरी तरफ आ जाओ, अल्लाह के बंदो मेरी बात सुन लो। इसीलिए हर मुआशरा जिसमें से आप खराबियां दूर करना चाहते हैं ना, वहां लिख लीजिए सबसे पहली चीज जिसको आप वहां दुरुस्त करेंगे वो लोगों का अल्लाह से ताल्लुक है। शिर्क के 2 बुनियादी जवाज़ लोगों ने हर दौर में दिए, एक है अल्लाह बहुत दूर है, चूंकि अल्लाह दूर है तो सामने मौजूद बुजुर्ग बहुत करीब लग रहे हैं, इनको खुश कर दो अल्लाह खुश हो जाएगा। एक गांव वाली औरत थी, तो किसी ने उनसे कहा कि आओ दुआ मांग लें, तो कहती बाजी दुआ तो मजार पे जाके मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह दूर है तो बाजार पे जाके बाबा जी के मांग लेंगे, पीर साहब से कहेंगे और वो अल्लाह से कहेंगे फिर मानेंगे। पहली चीज कि अल्लाह दूर है, तो दूसरी चीज यह है कि जब तक हम उन दूसरों को बीच में नहीं लाएंगे हम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते। एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है लोगों को कि तुम अकेले खुद नहीं बात कर सकते, ये नहीं हो सकता। और आज आप देख लीजिए कि किस तरह से कौमों का जवाब आपको बताएगा कि माइंड पैटर्न क्या था उनका। उन्होंने कहा है सवाल, इससे पहले तो तुम्हारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। ये क्या बात हुई कि जो नबी होते हैं ना वो किसी सोसाइटी की क्रीम होते हैं। आप इसको यूं सोचें कि आज एक बच्चा बहुत डैशिंग, बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, हर इम्तिहान में पास हुआ, शुरू में मैट्रिक में, ओ लेवल में, ए लेवल में, अब माँ बाप को तो उम्मीदें लग गई ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, और वो मुल्ला बन गया। उसने कहा नहीं मैं तो एक साल का गैप लेके पहले कुरान सीखूंगा, नहीं मैं तो अपने आप को चेंज कर रहा हूँ और मैं तो दीन सीखूंगा। बस माँ बाप की तो आंखों से आंसू ही ना रुके, हाय हाय हमें तुमसे तो बड़ी उम्मीदें थी। दुनिया ने हमसे बहुत उम्मीदें आज भी लगाई हुई हैं, हम उनकी उम्मीदों पर दिन रात पूरा होने की कोशिश भी करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दावते हैं करते हैं, उनके साथ शॉपिंगें करते हैं, उनके बच्चे पालते हैं, उनकी मेहंदियां सजाते हैं, उनके उपटन सजाते हैं। जो ही आप इस किताब के साथ बाज़ाब्ता जुड़ते हैं ना, तो वो सब थ्रेट फील करेंगे, तुम्हें क्या हो गया। क्योंकि पहले आप क्या कहते थे, वो कहती अस्सलाम वालेकुम आर यू अवेलेबल, यस एनी टाइम, आई वॉन्ट टू कम योर होम एनी टाइम। अब आप कहेंगे नो सॉरी यू कैन कम एनी टाइम, बस वही रास्ता बदल गया। जब आप लोगों को ऑलवेज अवेलेबल का सिग्नल देते हैं ना, तो वो आपसे खुश रहते हैं, वो आते हैं अपनी मर्जी के वक्त में, लेकिन आपने जो कह दिया एनी टाइम। अब जब आप बामकसद इंसान बने, कैसे हो सकता है आप सबके लिए हर वक्त अवेलेबल हो? क्या ऑफिस सारे खुले रहते हैं सारा दिन 24 घंटे? बैंक खुले रहते हैं? सदर ओबामा का ऑफिस हर वक्त खुला हुआ? क्या व्हाइट हाउस के दरवाजे कभी बंद होते नहीं देखते? हर चीज सिस्टम पे चलती है, लेकिन ये जो हमारी बेतरतीबी और हमारा लाइफस्टाइल का इतना ज्यादा मेस्टअप होना होता है, जिसकी वजह से लोग हमसे बड़े कंफर्टेबल, वो एक फोन करते हैं भाभी आ रहे हैं चाय बना के रखे, साथ पकोड़े भी बना लीजिएगा, चले जलेबी तो आप बहुत ही अच्छी बनाती, खत्म। फिर जाते हुए चार तारीफें करके आप फिर कब बुला रही हैं। और ये भाभियां पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं, भाइयों की निस्बत भाभियां बड़ी अच्छी लगती हैं। अब आप लगे हैं, जूते हैं, परेशान है, जो भी है फ्रिज से निकालो, आप कहते खाली क्या पकौड़े बनाऊं, कुछ करो, चलो चिकन भी डालो। आप रोते धोते आप 6 चीजें बनाए, पोके वाह मजा आ गया, खाएंगे पिएंगे साफ करके, जब उनका कहीं और जाने का वक्त होगा घड़ी देखते रहेंगे, जब वो फारे अच्छा आप जाते हैं खुदा हाफिज। अब आप रोए, आपकी जोहर गई, मगरिब गई, असर गई, कल आपका टेस्ट था, पेपर था, आप रोए धोए, वो कहेंगे आपकी मर्जी हम जले। याद रखिए लोग हमें मिस यूज करते हैं, ये है खुदा बनाना, सिर्फ अल्लाह की जात है। जब कहे फला तो आप कह लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, आई एम अवेलेबल, आई एम कमिंग माई अल्लाह ताला। जब हम दुनिया को हर वक्त अवेलेबल रहें और अल्लाह के लिए ना रहें, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अब इस जुमले को दोबारा सुने, कहने लगे ऐ साले, इससे पहले तो तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्को आती, क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? नोट कीजिए, बाप दादा, फैमिली वर्शिप, घर बनाने में, दुनिया में रहने से, शादियां ब्याह करने में, सुन्नतें पांव के नीचे रुले तो रुले, अल्लाह के हुक्म पसे पुश डले तो डले, खानदान पीछे नहीं रहेगा, रस्में पीछे नहीं रहेंगी। नहीं, हमारा रिवाज है कि दुल्हन को जोड़े दो, हमारा रिवाज है कि उसकी सास को कड़े डालो, ये नियम छोड़ सकते फिर बातें बहुत होंगी। तो याद रखिए, इस्लाम जब लोगों के अंदर आएगा, जब आप उनको लोगों की परस्तिश से बास रखेंगे, जितना आप गुलामी का बोझ कबूल करते जाएंगे, लोग आपको अपना गुलाम बनाएंगे। एक दफा आप रब की गुलामी में आ जाए, फिर देखिए जरा कैसे होगा। जब तक हम अपने आप को अल्लाह के लिए किसी काम का साबित नहीं करेंगे, लोग हमें ऐसे ही मिसयूज करेंगे। इसलिए खुद को रुसवा करना, हम कहते हैं ना लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, चलिए आप जरा दावतों में कम बुलाइए उनको, आते हैं आप रखिए रोटी सालन दाल जो पका हुआ, फिर देखिए जरा क्या कह के जाते हैं। ये कुछ खिला पिला के जो मर्जी कर लीजिए किसी गैर को, आप देखिए जानवर को लोग दूध डालकर अपना बना लेते हैं, अपनी जान मार के लोगों को अपना बना लिया और तारीफों के चंद मोती ले लिए, तो क्या मिला? हमेशा लिमिट्स में रहे, हमेशा ये पूछे कि कौन मेरे लिए कितना अहम है। तो लिहाजा कहने लगे कि तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है, हमें इस बारे में सख्त शुबा है और जिसने हमें हिलजान में डाल रखा है। हमें हर बात की मशवरा दें, लेकिन सॉरी हमें कुरान का मशवरा ना दें। नहीं अम्मा, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, अभी हमारे पास वक्त नहीं, हम बहुत बिजी हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमारी जॉब चल रही है। वैसे सुनाए क्या हाल है, ईद पे क्या बन रहा है, उधर क्या हो रहा है, घंटों बात करेंगे। आप आजमा के देखें, किसी पार्टी महफिल को या किसी फोन कॉल को आप खुद आजमा लीजिए। आप बात करें ऐसे, क्या हाल है, क्या कर रही थी आप तो नहीं, आप कहते, अब तो तू ही कहते हैं ना, क्या करती कर रही थी तुम, ठीक थी, चलो क्या करते हैं टाइम है, हाँ हाँ बात करते हैं, करें। आप घड़ी में देख के बात करना शुरू करें, 5, 10, 15, 20 में आप कहेंगे तुम्हारा टाइम ले रही, अरे नहीं ना फारिग थी। बस आप जरा सा मौजू बदलें कि चलिए क्या हाल है आजकल, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ क्या है, दो चार जुमले बोलेंगे ना, अच्छा वो सुना, एक्सक्यूज मी, वो मुझे जाना है, अच्छा देखो वो बच्चे के लेने का टाइम है, अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, फौरन लोग मौजू बदलते हैं। किसी महफिल को जोश पे देखें, मैं आपको एक पक्का नुस्खा बताऊंगी, मैंने 20 बार ये देखा है लोगों के घरों में, दर्स खत्म हो गए या दर्स नहीं तो कोई शादी फंक्शन कोई, अब लोग बैठते हैं, खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ खूब गप्पे मार रहे हैं, उधर मर्द उधर औरतें बच्चे, एक घुमसान है। अब आप सुबह से खिला रही थी पिला रही थी, आप सोना चाहती हैं, लोग जाने का नाम ही नहीं लेते। फिर अखीर आप कहते हैं अच्छा अब क्या भाभी पिला रही हैं, अब कहवा चल रहा है, अच्छा अब जूस चल रहा है, अच्छा अच्छा चले अब फक्की दे दें, चले अब तो ये, अच्छा चले अब जाने की रात को क्या सुबह खा के ही जाएंगे, सारी रमजान की रातें और सारी सारी रात गप्पों में गुजर जाए। अच्छा अब आप तो परेशान है। आसान नुस्खा, जब आप खिला पिला चुकी, जो खिलाना था पिलाना था, पहली बात है कि आप परेशान ना हो के आपने कहीं ना किसी की अपनों को ना बुलाना हो जो एक दूसरे को इधर देख रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि आप जब खिला पिला चुके ना, उसके बाद आप कहना हो ना भाभी बैठो, आप बातें करते हैं, बातें करें, आप शुरू करें कोई दीन की बात, क्या ख्याल है, चलो थोड़ा सा बैठ के कुरान का एक सबक ना पढ़ लें, चलो और थोड़ी सी बात करें, इधर आप करेंगी उधर लोग जूते उठाने शुरू हो जाएंगे। क्या ये किसी ने कभी आजमाया? ऐसे ही होता है, फौरन महफिल का रंग बदलता है और वो सब दुम दबा के भाग जाता है। तो अपनी वर्थ पहचाने, रियली आप बहुत कीमती हैं, आप जैसे हीरे तो जाया नहीं होने चाहिए, एक ही जिंदगी है, एक ही मोहलत है, आज तक हमने अपना आप दुनिया को दिया, एक दफा अल्लाह को देखे देखे, कहते ना कि तू मेरा बन के देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना, लोग आपका एक मिनट लेने से पहले 3 दफा पूछेंगे, कैन आई टेक योर 1 मिनट प्लीज, मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको, जब लोग आपको किसी मकसद के लिए जीता देखते हैं ना, वो कभी आपको डायरेक्ट फोन नहीं करते, वो पहले मैसेज करते हैं कि कैन वी कॉल यू, क्या आप बिजी तो नहीं है, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप सो तो नहीं रही, क्योंकि उनको पता है कि ये कीमती वक्त है जिसको हम लेने लगे। हम में से कोई उठ के डॉक्टर को अपना हाल तो नहीं सुनाने लगता फोन करके, इंजीनियर्स को और लॉयर्स को बैठ के फोन पे तो नहीं कहानियां सुनाते, वो कहते कम हेयर टेक टाइम एंड आइए अपॉइंटमेंट लीजिए। हाँ हम सिर्फ हम उम्मत वसत आज बेकार खुशगपियों के लिए रह गए। आप पढ़े लिखे लोगों को देख लीजिए, जो भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो भी वक्त जाया नहीं करते, उनके पास भी मैनर होते हैं, उनके पास भी टाइम होते हैं। तो लिहाजा अपने आप को इन सारी चीजों से निकालकर अल्लाह की मर्जी का बनाने की जरूरत है। अब जब कौम ने ये सारी बातें कर दी कि हमें तो आप पे बड़े शक हैं, और शक अमल का दुश्मन है, शक वाला दिल कभी दीन में नहीं टिकता, वो भाग जाता है। सवाले का जवाब सुनिए, सवाले अलैहि सलाम ने कहा है बिरादराने कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया? ये नोट कीजिए, गौर करवाएं लोगों को, थॉट प्रवोकिंग सोल सर्चिंग क्वेश्चंस, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। क्या सोचना है? अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया था, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो? और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो, इससे जरा सा तारुस न करना, वरना कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। यकीन करें कि गोल्डन वर्ड्स हैं हजरत सवाले की जुबान से जो अदा हो रहे हैं, सोच दिलवा रहे हैं, देखो तुम मेरे दुश्मन हो ना, लेकिन तुमने सोचा कि अगर मैं अल्लाह की तरफ से सच्चा हूं और तुमने मेरी दुश्मनी की तो क्या होगा, और रह गई बात मैं तुम्हें खुश करूं तो मैं तुम्हें तो खुश कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें खुश करने में अल्लाह नाराज हो गया तो मुझे तुम बचा सकोगे अल्लाह से? ये जवाब है हर उस बंदे के लिए जो आपको बाय हुक और बाय क्रुक किसी गुनाह पे माइल करे। चलो ना शादी का मौका, मैं कह रही हूं मेरे कहने पे कर लो, मैं तुम्हारी अम्मा हूं। बाज़ दफा अम्मा ही करवाती हैं गलत काम। चलो मैं ले लूंगी तुम्हारी जिम्मेदारी। एक बच्ची थी, उसने कुरान पढ़ लिया, और जब उसकी शादी का मौका, उसने कहा मैंने तस्वीरें नहीं खिंचानी, मुझे कोई फोटो सेशन नहीं चाहिए। तो जो खानदान की बड़ी अम्माएं और नानियां दादी, वो कहती मैं लूंगी तुम्हारी जिम्मेदारी, घटाओ, मेरे ऊपर है ये, इस मौके पे क्यों नहीं लेनी, ये यादगार लम्हे होते हैं। तो उस वक्त के लिए ये जुमला याद कर लीजिए, फिर कौन मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाएगा। और वो एक वाक्य अभी सुना होगा ना आपने, एक लेक्चर में भी जिक्र हुआ था कि एक बच्ची जिसकी शादी हो रही थी, तैयार हुई, घर में मेहमान है या हॉल में जहां भी है, तो इतने में मगरिब का वक्त हो गया। तो उसने माँ से कहा कि अम्मी मुझे नमाज पढ़नी है। तो माँ ने कहा ये कौन सा वक्त है नमाज पढ़ने का। कहने लगी ये कैसे हो सकता है मैं नमाज ना पढ़ू, मेरी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है। कहने लगी चलो जाओ उधर पढ़ लो। फिर उसने दूसरा सदमा जो माँ पे तोड़ा वो क्या था, मेरा वुजू नहीं है। माँ की तो चीख निकल गई, अल्लाह अकबर, इतना महंगा मेकअप करके आई है, वजू होगा। उसने कहा कि क्या शक्ल दिखाओगी लोगों को वजू करने के बाद। कहने लगी मैं अपने रब को क्या शक्ल दिखाऊंगी। और उसने वजू किया और नमाज शुरू की। जूं ही वो मगरिब की नमाज अदा करके उठी, एकदम उसको चक्कर आया और वो मर गई। जी ये वाकया मैंने पीछे कहीं सुनाया था कि वो बच्ची अगर उस वक्त माँ के प्रेशर में आती, शादी के प्रेशर में, मेकअप के बोझ में, पैसों का जिया होने से, तो वो बेनमाजी होके जाती। तो किसको पता है कि किस रुखसती का वक्त पहले आएगा, इस दुनिया से वापसी पहले या माँ के घर से वापसी पहले। कभी किसी इंसान की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज ना करे, ये आपको दुनिया में इज्जत देगा, ये आपका असूल होना चाहिए। आप मैनेजमेंट में, आप एकेडेमिक में, आप दीन का काम करे, छोटा करे, मेक श्योर प्रिंसिपल्स एंड देन फॉलो देम। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अबू बकर की तरह एक पतली सी, वो कहते हैं ना कि छड़ी बन के खड़े रहना दीन का झंडा लेकर, के मैं नहीं छोड़ सकता, जो अल्लाह का नबी करता था मैं वो करके रहूंगा। इससे सिस्टम चलते हैं, इससे फिर फ्रेंचाइजेशंस होती हैं, फिर इससे रूल्स फॉलो होते हैं। और हर बंदा आके आपको टेबल पे अपनी मर्जी का असूल लेकर चला जाए, रूल तुड़वा के चला जाए, ये आज उम्मत मुस्लिमा का मसला है। हर बंदा कहता है यस इट्स वेरी गुड टू मेक रूल्स बट नॉट फॉर मी। सबको फॉलो करना चाहिए रूल्स को, मुझे नहीं करना चाहिए। सब लाइन में खड़े हो, मुझे सबसे आगे कर दे क्योंकि मुझे भूख बड़ी लगी हुई है, मुझे जल्दी जाना है। तो याद रखिए कि ऐसे लोग फिर अल्लाह के भी पसंदीदा नहीं रहते। हजरत सालेह के जरिए एक बहुत ही अजीबो गरीब मुतालबा किया था, अब उसी की तरफ इशारा। कहने लगे कि ये पहाड़ी, एक छोटी सी कातिबा नाम की एक रॉक थी वहां। कहने लगे सालेह हम तुझे इसलिए नबी मानेंगे अगर तेरे कहने पे अल्लाह ताला इस पहाड़ को फाड़े और इसमें से एक जिंदा ऊंटनी निकले और वो ऊंटनी हमारे सामने एक बच्चे को पैदा करे, फिर हम मान जाएंगे तो नबी है। देखिए नबी है कि मदारी है। नबी ने कभी ये ख्वाहिश की कि मैं कोई शोभदाबाज हूं, कोई मैं मैजिशियन हूं? लेकिन जिनको भूख नहीं होती ना हिदायत की, वो ऐसे ही मुतालबे करते हैं। एक्चुअली एक्चुअली ये लफ्ज एक्चुअली को लंबा कर लेना, यही सोचे आइए बटी नहीं, एक्चुअली ये मसला है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, दूर बहुत है, कोई नहीं, राइट नहीं, मिला देते हैं, दे देते हैं, नहीं फिर ये मसला है, अच्छा नहीं, असल समझ आओ, समझ आ गई कि शौक नहीं है। देखिए आपको भूख लगी हो ना, तो आपको कहीं से भी खाना मिले आप लेने को तैयार है, जैसा भी मिले आप कहते भूख है पेट भरो। बीमार हैं आप, डॉक्टर पे जाते हैं, आप इस मुल्क को ही देख लीजिए, कई दफा घंटों लोग बैठते हैं लाइनों में, बल्कि बाज जगहों में मैं सुनती हूँ लोगों से कि इमरजेंसी में जाते हैं फिर भी घंटे दो बैठते हैं, फिर बारी आती है, मरीज मर जाए लेकिन वो कहते हैं मर बस अभी बहुत रश है, बैठते हैं ना जाके, आधी रात को उठ के भी जाके पेट के दर्द के लिए दवा लेने जाते हैं ना। पता है कि ये दवा चाहिए, जिसको इस किताब की तलब है ना वो तो आपको फोन करेगा कि मुझे जाना है, और जिसको आप खींचेंगे वो कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, लोगों को फोर्स करें? नहीं, उनकी भूख जगाएं, थोड़ी सी भूख जगा दें उस शख्स की जो कहते हैं मुझे नहीं खाना, मैं नहीं भूखा। आप कहते अच्छा इधर बैठ तो जाए मेरे साथ, अच्छा पानी पी लें, जो ही पानी पियेंगे ना वो पहला सब स्टक माल आगे जाएगा, आप खाना खोलती हैं, खुशबू आती, गर्म रोटी की, सालन की, आप देखिएगा थोड़ी देर में वो खुद आपके साथ रोटी तोड़ने लग जाएंगे। आप सैंपल्स दें लोगों को, अपनी खुशियां शेयर करें, सीडीज बांटें, क्लिप्स बांटें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दें, जो बात आपके 10 दफा कहने से वो नहीं मानेंगे वो अपने कानों से एक बार सुन लेंगे तो वो आपसे फिर पूछेंगे। और कुछ लोग बड़ी देर कर देते हैं इन हिकमतों में आने से, जब लोगों से शेयर करें अपने कुरान की खुशी, दिल का सुकून, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल रही है। ये कभी ना हम बाहर कहते मैं तो बदल रही हूं, तुम भी बदल जाओ, वो कहेंगे औसबिल्ला शुक्र है हम तो जाएंगे नहीं। सबसे मुश्किल चीज तो तब्दीली है। आप देखिए कितने भी छोटे घर से बड़े में जा रही हूं, जब आप तब्दील हो रहे होते हैं, मूव होते हैं, वो दिन बड़े मुश्किल होते हैं। जिस दिन इस मुल्क से आपने अपने पाकिस्तान ही जाना है बड़े प्यार से या इंडिया, वो दिन कितना हार्ड होता है, इधर की चीजें, उधर सफर, ट्रैवलिंग, लेकिन फिर जाके चैन आता है। लोग कभी बदलना नहीं चाहते। आप लोग अपने लिए लिख के रख ले। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप जैसे दोस्तों के होते हैं, दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। आप जब अपनी दोस्तों को जाके ये कहती हैं, बस इस कुरान ने तो मुझे बदल के रख दिया, आए वो डर जाएंगे। इस कुरान ने तो मुझे तोड़ के रख दिया, और फिर मैं तो नहीं टूटना। आप किसने मुझे जोड़ दिया, इसने मेरा दिल जोड़ दिया, इसने मेरे दिल से नफरतें निकाल दी हैं, फिर देखिए आएंगे। तो एक एक जुमला मोमिन सोच के बोलता है। कई दफा हमारे जुमले, चाहे हम एक्साइटमेंट में बोल रहे होते हैं, हम खुशी में बोलते हैं। मुझे याद आ जाता है, एक शादी थी, मुझे भी इत्तफाक से, बदकिस्मती से कह ले, उन्होंने बुला लिया। तो वहां अपने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। अच्छा जी, अब वैसे तो मुझे अपने कारनामे सुनाते ही थे, उस दिन मैंने आंखों से देख लिए। अब क्या होगा, मैं एक जगह साइड पे बैठी थी, एक दूसरे टेबल पे ये सारी कुरानी दोस्तें बैठ गई जी, हम इस्लामी बहन उधर अपनी किसी दोस्त को बुला ली। अब सर हम कोर्स कर रहे हैं, हर हफ्ते टेस्ट होते, रोज तर्जमा सुनते हैं। अच्छा, मैं दूसरे टेबल पे बैठी, मेरा दिल उड़ाए, इतना मेरे लिए नामुमकिन हो गया उस वक्त सुनना उनकी बातें। वो अपने जोश में सुना रही थी, यहां भी देखो सपारा साथ लेकर। मैंने कहा जिसने लेना है वो भी नहीं कोर्स लेगा, आप जैसे अकलमंदों की वजह से। आप लोगों को देखें वो हैं कौन। देखिए अभी अगली सूरत हम शुरू करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा हिकमत क्या होती है, और फरासत किस चीज का नाम है, और मामला फहमी किस चिड़िया का नाम है, और लोगों के साथ कहां रुकना है, कहां चलना है। गाड़ी चलाते वक्त आपको पहले ही पता है कहां ब्रेक लगाऊंगी तो इससे पहले रुक जाऊंगी, कहां हैंड ब्रेक लगानी है, यहां ओवर स्पीड है, इधर कम है। लेकिन जिंदगी के मामलों में बास दफा हम इतने रिलैक्स होते हैं, हमारी जुबान यकीन करें हमारी गाड़ी की जो समझे कि स्पीड है उससे ज्यादा तेज चलती है। तो ये हिकमत कब आती है, जब अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपना खौफ दे दे और अपनी मोहब्बत दे दे। अब उस निशानी के साथ उन्होंने किया, क्या हुआ, वही हुआ जो कहा। हजरत साले ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला तेरे लिए क्या मुश्किल है, यही कहा होगा ना कि अल्लाह तू तो मां के पेट से बच्चे को निकाल लेता है, तेरे लिए पहाड़ से निकालना क्या मुश्किल है। वाकई वो चट्टान फटी। अब इमेजिन करें, हम सब यहां बैठे हैं, सामने एक पहाड़ी है, पत्थर की चट्टान जो वो फटे, उसमें से एक मोटी ताजी ऊंटनी निकली, नाकतुल्लाह का। इतनी बोझल थी, अपने बोझ से लुढ़क रही थी। फिर वो वहां एक जगह पहुंची, फिर वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने लोगों के सामने बच्चा दिया, वो बच्चा उनके सामने देखते ही बड़ा हो गया। कितना बड़ा मौजजा देख लिया, वक्ती तौर पे मान गए, वाह माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मान गए, चलो जी हम आपको नबी मानते हैं। अब ये तो सोचा ही नहीं कि ऊंटनी मांगी है तो वो खाएगी भी, उसको पानी भी चाहिए, उसको दे। पास हम दीन के नाम पे भी बहुत बड़े बड़े मुतालबे कर देते हैं। आप ये कीजिए, हम आपको इन्वाइट करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम ये काम करेंगे वो कर। जब वो ऊंटनी आके बैठ जाती है तो उसके तकाजे वही निभा पाते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। दूसरे लोग तो कहते अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था ये भी होगा। याद रखिए, दूर से दीन की बातें करना, खिदमत करना बड़ी बात है। ये मैं आप सबको भी सुना रही हूं जो कह रहे हैं कि यहां साल का कोर्स कराए, ये तो एक महीना आपने जैसे तैसे कर लिया ना माशाल्लाह आसन दर्जे पे। एक साल के लिए अगर आपने यहां कोर्स करवाना है तो वो ऐसे थोड़ी होगा, उसके लिए कमिटमेंट एक साल की होगी। जो आप में से कहते हैं कोर्स शुरू कराएं तो वही पहले अपने आप से पूछ लें कि क्या मैं कमिटेड हूं, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, वरना दावे करने वाले जो हैं वो पीछे हो सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग रेडी होते हैं, वजह के दिल से उठती है। और किसी को आप पकड़ के इधर उधर से सहारे दे के खड़ा कर भी लेंगे ना, पहली मुश्किल पर गिर जाएगा। वो ऊंटनी जब आई, अब वो खाना खाने जाती, जब तो सारी खेती को चढ़ जाती, इनके जानवरों के लिए सब्जा ही ना रहता। जाती कुएं पे पानी पीने, सारा पानी पीती, और जहां से वो ऊंटनी गुजरती इनके जानवर परेशान होते। कुछ दिन तो सब्र किया, फिर कहने लगे इस वाले ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई। देखिए लोग अल्लाह की नेमतों से इसी तरह महरूम होते हैं। वो चीज जो उनकी हिदायत का जरिया बनी ना, चलिए ऊंटनी निकल गई, मुसलमान तो हो गए, लेकिन उस ऊंटनी के तकाजे नहीं निभा सके। आज भी मुसलमानों में से अक्सरियत का यही अलमी है। हम नेकी का काम शुरू करते हैं, करना चाहते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, हम मदरसे भी बनाते हैं, हम हॉस्पिटल भी बनाते हैं, हम बच्चों के लिए पाकिस्तान में और इंडिया में स्कूल भी बनाते हैं, हम उसको निभा नहीं पाते। कभी आपने सोचा दीन का कोई काम हो और अनअटेंडेड पड़ा रहे, वहां की छतें टूटी, वहां पे आप क्यों मानने जी मस्जिद इमाम साहब नहीं है जी, स्कूल का क्या हुआ जो आपने इतने प्यार से बनाया तो वहां टीचर नहीं है। ये घर घर की कहानी है। तो आज दीन के काम को शुरू करना इट्स वेरी इजी, पर उसको आसन दर्जे पे तकमील तक पहुंचाना ये है असल में कमिटमेंट का काम। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अपने इर्द गिर्द हर तरफ ऐसे ही लोग दिखते हैं कि एक दफा मुंह से बात कर दी फिर वो पत्थर की लकीर पे पड़ गए। मुश्किलें आई, आंधियां आई, तूफान चले, लेकिन वो नहीं पीछे हुए। क्यों? कि वो उनके दिल की पुकार थी। जब इंसान को ये पता चल जाता है ना कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है और इस किताब ने और इस कुरान ने मुझे जॉब दे दी है, फिर बंदा उसके तकाजे निभाता है। लेकिन जब कोई ऊपर नीचे की बस बातें होती हैं तो इंसान फिर उससे दूर होने लगता है। अल्लाह के नबी के साथ ये मामला कैसे किया? जब ऊंटनी से थक गए, एक दिन क्या हुआ, मगर उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। अब देखिए, ऊंटनी को मारना आज की जुबान में आप कह लीजिए, मैं बड़ी जुरत के साथ कहने लगी हूं, कुरान को फाड़ देना। और किसी मुफक्किर है, मुझे उनका सही नाम याद है भी कुछ नहीं, भी डाउट है, उन्होंने एक जुमला बोला था कि पाकिस्तान का वजूद ये सालेह अलैहिस्सलाम की नाक है। यकीन करें, इशफाक अहमद का नाम सुना हुआ आपने? मुझे याद कुछ पड़े, उनका कॉल है कि वो मुसलमानों, तुमने ये पाकिस्तान मांगा था अल्लाह से, ये अल्लाह की नाका है, नामुमकिन था कि तुम्हें ये पाक जमीन मिलती, लेकिन अल्लाह ने मौजजाना तौर पे तुम्हें दी। आज तुम उसके तकाजे पूरे नहीं कर पा रहे। आजादी तुम्हें हिंदुस्तान में रह के मिल गई ना, लेकिन आज तक आजाद नहीं हो सकता। तो याद रखिए, आज उम्मत मुस्लिमा को इसमें से सीखना है, जब किसी चीज की दुआ करे तो साथ ही उसके रास्ते की जो आजमाइशें और मुश्किलात है उसकी कमी की भी दुआ करें, और उसके लिए जहनी तौर पे तैयार भी रहें। फिर कुछ नहीं होगा, पहले से तैयार होते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें हैंडल हो जाती हैं। और जब ये सोचते हैं कि बस ये मिल गई चीज तो बस ऑनर ही ऑनर है, तो फिर तो नहीं मिलती। लिहाजा उन्होंने उठनी को मार दिया। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में रहो और रह बस लो, ये ऐसी मियाद है जो झूठी साबित ना होगी। अब ये वो वक्त था जिसपे उन्होंने अपने लिए हुज्जत तमाम की, 3 दिन की खबर दी। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को और इन लोगों को जिसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और उस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बाला दस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, तो एक सख्त धमाके ने इनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए कि गोया के वो कभी वहां बसे भी ना थे। याद रखे, जब कौमे अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी करती हैं, अल्लाह उनका वजूद तक मिटा देता है, ग्लोब से उनका नाम मिट जाता है, कभी थे ही नहीं। कई ऐसे मुल्क बर्बाद हो गए कि आने वाली नस्लें तो सोचेंगी कि ये कभी थे ही नहीं। जिन लोगों ने उनको मिटते देखा है उनको तो आज भी वो नाम याद है, लेकिन आने वाली नस्लों को याद नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि वो खत्म हो गए, चले गए, और अल्लाह ने थोड़े से लोगों को बचा लिया। हजरत सालेह की ये धमकी 3 दिन के अंदर कैसे पूरी हुई कि पहले दिन सुबह उठे तो उनके चेहरे जो थे वो सुर्ख हो चुके थे, पीले हो चुके थे। दूसरे दिन उनको साफ पता चल रहा था कि हमारे ऊपर अब अजाब आ रहा है। फिर रोए धोए, लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि जब किसी कौम पे अजाब शुरू हो जाए फिर नहीं रुकता, बस अब अल्लाह के अजाब का कूड़ा बरसेगा। तेल मल के खुशबुए कफन पहन के कहते हैं बैठ गए अपने घरों में। कितनी अजियत थी नबी की नाफरमानी की, और अल्लाह की तारीफ एक नेमत कुरान या अल्लाह की तारीफ नाका की नाकदरी की सजा मिली। और जो ही तीसरे दिन सुबह उठे तो स्याह हो चुके थे चेहरे, और उसके साथ एक चीख चिंगाड़ है, जलजला है, रजफा है, कहीं सह है, और पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो गई। आज तो नबी नहीं है ना, तो हमें वक्त से पहले कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। बोला ही अगर आज का जलजला जो कहीं भी आता है, अगर अजाब है ना, मिसाल है, हम नहीं जानते क्योंकि नबी नहीं है तो हमें नहीं पता अजाब है कि आजमाइश है, लेकिन कहीं भी जलजला आता है और बिल फर्जे मोहाल के वो अजाब है, तो अगर आज के दौर में नबी होते तो वो कौम को पहले से बता चुके होते कि कल तक जलजला आ जाएगा। कोई भी दुनिया का गैजेट अभी तक नहीं बता सका कि कब जलजला आएगा। जब आता है तो फिर वो कई कुछ मैयर कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह की तरफ से खबर मिल जाती है और वो नबी फिर वहां से निकल जाते थे। चंद लोगों को लेकर रातों रात निकाला, पीछे से अजाब आ गया और कौम सारी की सारी तबाह हो गई। सुनो, समूत ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूत। आज भी आप देखिए कि जब इंसान अपने ऊपर लेकर सोचे तो वो आज कहां है। कभी आपको मुझे किसी दुनिया के नक्शे में चलते फिरते दुनिया में कौम समूत का कोई दिखा, कौम याद का कोई दिखा? इस तरह अल्लाह कौमों को मिटा देता है, हरफे गलत की तरह लोग मिट जाते हैं। आज भी आप देखिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे तरफ 3 किस्म के शहर आबाद हैं, एक है इंसानों की बस्तियां और एक है खंडरात और एक है कब्रें। आज भी कब्रों में देखिए कि लोग किस तरह मुर्दा पड़े हुए हैं, खंडर क्या, लोग नहीं है, चीजें मौजूद हैं टूटी हुई हालत में, और एक मेरे और आपके घर हैं जो आज हम बस रहे हैं। किसी वक्त भी इंसानों की बस्तियां खंडरों और कब्रों में बदल सकती हैं। ये सब पड़ा रहेगा और हम चले जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने अजाबों से बचा के रखे। और आपको वो जुमला इस वक्त याद रहना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने कहा, शैबतनी हूदुन व खवातुहा, मुझे बूढ़ा कर दिया सूरत हूद ने और उसकी बहनों ने। वो और सूरतें 29 में पारे में आएंगी तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। हम सूरत हूद को कुछ समझते ही नहीं, हम कहते हैं नबियों की कहानी 15 मिनट में हो जाएगी। यकीन करें, जब लेसन प्लान बनाते हैं ना तो 20 से 25 मिनट सूरत हूद के लिए रखे होते हैं कि इसमें तो स्टोरीज हैं, सबको पता है। लेकिन ये सूरतें आज उम्मत मुस्लिमा पे आने वाली सजाओं की खबर दे रही हैं। बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, क्यों? इसलिए कि जब मुसलमान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा उन पे आता है। देखिए एक जुमला लिख लें, काफिर गुनाह करे अल्लाह को गुस्सा नहीं आता, काफिर अल्लाह का हुक्म ना माने अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। क्यों पूछे? क्यों? उसने कहां दावा किया था कि मैं मानूंगा? उसने कहां इकरार किया था कि अल्लाह तेरा हुक्म मानूंगा? मुसलमान गुनाह करे, मुसलमान बात ना माने, मुसलमान नाफरमानी करे तो अल्लाह को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो कई बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू मेरा ऑनर है, तेरे सिवा कोई है नहीं। वो दिन में 17 बार कहता है या कनाबुदु या कनस्तईन, अल्लाह तू मुझे काम दे मैं काम करूंगा, और उसके बाद आजिज भी रहूंगा और खुद को गुलाम समझूंगा, और जहां वक्त पड़ेगा इबादत का इबादत भी करूंगा, इताअत भी करूंगा। जब एक दिन में कोई 17-18 बार आपको ये कहे बाजी कोई काम दे दो, कुछ जो कहेंगी वो करूंगा, जो कहेंगी वो करूंगी, और आप जरा सा काम दे और वो नखरा दिखाए तो गुस्सा आपको किस पे आएगा? एक वो औरत है जिसने आपसे कमिटमेंट ही नहीं की कि कल मैं आऊंगी क्लीनिंग के लिए, वो आपकी मेट नहीं बनी, क्या कल उसके ना आने पर आपको उसको गुस्सा आएगा? क्योंकि उसने कब कहा था मैं आऊंगी, आपको किस पे गुस्सा आएगा? जो आपका आधा पौना घंटा लगाकर सारी बातें तय करके गई, ये करूंगी वो करूंगी, अगले दिन पता चला ही नहीं, और आई तो वो किया नहीं जो कहा। हम मुसलमानों ने अल्लाह की गुलामी कबूल की है, कुफार ने नहीं की, इसलिए मुसलमानों को दुनिया में सजा मिलती है। कुफार पे अल्लाह को गुस्सा और तरह का आता है, वो अल्लाह ने डिले किया हुआ है। अल्लाह कहते हैं ये मेरे ही बंदे, इनकी दुनिया तो मैं अच्छी रखूं क्योंकि आगे कुछ नहीं है। मुसलमान नाफरमानियों के बावजूद भी खुशकिस्मत है कि दुनिया में अल्लाह उनको पकड़ लेता है क्योंकि आखिरत देनी है। तो मैं और आप आज दुनिया में आने वाले जलजलों, तूफानों और जो कुछ है उसमें कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जाके ढूंढें। अल्लाह ताला की कोई चीज बेमकसद नहीं होती, अल्लाह ताला बचाए। और आप देखिए ये जुमला कितना ज्यादा आप कह लिए कि थॉट पर प्रोवोकिंग है कि सुनो समूत ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूत। ऐसे लगता है बिल्कुल अल्लाह ताला उनका नाम तक नहीं अब लेना चाहते। और इसके बाद एक और कौम, और देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए आए। किस बात की खुशखबरी? कि बुढ़ापे में बेटा मिलेगा। अच्छा, बाकी कौमों के किस्से नबियों के नाम के साथ आते हैं ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने इतनी हिजरतें की थी, इनको अल्लाह ने जाती मामलात में ज्यादा आजमाया, फैमिली प्रॉब्लम्स में ज्यादा डाला। अब उसी की तरफ कुछ इशारे हैं। कहा तुम पर सलाम हो, फरिश्ते भी एक दूसरे को आते हैं तो सलाम कहते हैं, और जब इंसान मुसलमान होते हुए दूसरे को सलाम अलैकुम की जगह कुछ और हाय बाय कह दे तो क्या उस पर अल्लाह की रहमतें उतरेंगी? ये भी आज रिचुअल आम करने की जरूरत है। आपको क्यों इस पे कोई शर्म आए कि आप किसी को मिलते हुए क्या सलाम अलैकुम? ये तो श्योर है, ये तो क्राइटेरियन है, ये तो आपके मेरे मुसलमान होने की एक अलामत है। तो आज से अपने लिए नियत कीजिए, बच्चे हों, आप हों, घर में बाहर है, जहां मिले एक दूसरे से प्यार से अस्सलाम वालेकुम कहे। ठीक है कोई गैर मुस्लिम है वो हाय कहता है उसको हाय कह दें, वो बाय कहता है उसको बाय कह दें, उसको ना डिस्टर्ब करें सलाम करके, लेकिन आपस में सलाम को आम करें। क्योंकि जब हम सलाम के लफ्ज से शर्मिंदा है तो आप बताइए हम इस्लाम पे अमल कैसे करेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहिम एक बुना हुआ बछड़ा लेकर इनकी मेहमान नवाजी के लिए आ गए। क्या पता चला कि आते ही मेहमान को पूछना नहीं चाहिए क्या खाएंगे, पानी पिएंगे ठंडा के गर्म, पानी आप पी के आएंगे, चाय आप पीते को नहीं, गर्मी है बहुत, सर्दी में आइसक्रीम खाते नहीं, चले फिर कुछ नहीं करते। मुस्लिम्स आर टू मच हॉस्पिटेबल। किसी का वाक्य आपने भी सुना होगा, दो तीन लोगों के डिफरेंट तरह से पड़ा, जिसका खुलासा कि किस चीज ने उनको इस्लाम की तरफ माइल किया। वो कहते मैं किसी समंदरी सफर में कश्ती पे था जाके आता तो मैंने देखा कि एक सियाफ आम शख्स भी और वो मुस्लिम था। खैर सब बैठे हैं, थोड़ी देर बाद जब चली तो हर एक अपना लंच बॉक्स खोल के कुछ ना कुछ खाने लगता है। कहते हैं उसने अपना बैग खोला, पोटली सी थी, एक कोई भी बैग था, उसको जब खोला तो उसमें रोटी निकली। रोटी खोली फिर उसके अंदर से एक साइड से उसने कोई चीज और इस तरह की सैलड चीजें निकाली। कह रहे मैं देख रहा था। उसने क्या किया, अपनी उस रोटी को आधा किया, उन चीजों में से आधी चीजें उस पर डाल के तो बड़े प्यार से टिश्यू पिला के तुम मेरे पास रख दी। कहने लगा आप ले ले। कहता ये थी वो पहली चीज जिसने मुझे इस्लाम के करीब किया। सब अपने हाल में मगन है, इसने मुझे क्या ऑफर किया। इस सफर में अभी मुझे कोई याद आ रहा है, शायद नॉर्वेजियन ईयर में थे तो इसमें खाना खरीदना पड़ता है और लोग कोई खरीदता कोई नहीं खरीदता। हम वैसे भी अब कोशिश करते हैं कि सादा खाना ही हो तो अपना खाना साथ रखा होता है, कुछ भी था। तो जब खाना खोला ना तो मेरे हस्बैंड की भी शहादत है, जो इधर उधर उनको देते हैं, अक्सर लेते नहीं है ये लोग एक दूसरे का, लेकिन हमने जो भी था हमारे पास सैंडविच टाइप चीज थी तो खोल के तो इधर दिया। यकीन कीजिए कि एक बिल्कुल हम तीसरी लेन में थे तो हमारी दूसरी लेन में तीन थे, एक नॉर्वेजियन लग रहा था, दो और लोग थे। तो हमने पहले से देखा कि उसने भी कोई खाना दूसरों से, जो ही इन्होंने दिया ना उसको दिखाया तो कहने लगा इस फॉर मी, यस ओह थैंक यू थैंक यू। पर अच्छा इसके बाद उसने जब ले लिया इन्होंने एक और डाल के नेपकिन पे तो उसी को इशारा किया कि उधर ले। तो इतने शौक और जोर से उन दूसरों के मतलब तो उनको इशारे करे कि खाना ले लो और उसने खाया और यकीन करे उतरने तक शायद उसने 20 बार थैंक यू बोला होगा। ये खाना हमारा नहीं था, ये इस्लाम का खाना था। शायद उसने उसके दिल में एक पॉइंट का भी दिल के अंदर इस्लाम के लिए जगह बना दी तो यही इस्लाम होता है। तो बोल के थोड़ी तबलीग करते हैं आप, लैंग्वेज प्रॉब्लम फलां प्रॉब्लम दिस एंड प्रॉब्लम, आप अपने रवैयों से देखिए। तो हजरत इब्राहिम ने उनको नहीं पता ये फरिश्ते हैं, वो गए और गोश्त लेकर आ गए और अच्छी मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है, अल्लाह के नबी ने इसको ईमान के साथ जोड़ दिया। खैर मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने पर नहीं भरते तो इनकी तरफ से शक में मुबतला हो गए और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगे। क्यों, उस दौर में क्या होता था कि जब कोई किसी का खाना ना खाता तो दो बातों की अलामत थी, या तो वो दुश्मनी के इरादे से आया या कोई बुरी खबर लेकर आया। और इससे पता चला कि इब्राहिम जो थे वो गैब नहीं जानते थे, नबी थे लेकिन उनको ये नहीं था कि ये फरिश्ते हैं या क्या। बहरहाल खाना ना खाने पे परेशान हो गए। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी और वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। बुढ़ापे में 40-60 नहीं 80-90 साल की उम्र की औरत को कोई कहे कि तुम्हारे बेटा भी होगा और वो बेटा जवान होगा, उसके बाद पोता भी होगा तुम्हारा, वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी सुनाई। वो बोली हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे हाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूंस हो गई और मेरे मियाँ भी बुढ़े हो चुके हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, आप इसको ऐसे ही सोच लें कि 90 ईयर्स की औरत का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला है, तो फिर यही कुछ तो बोलेगी कि अब लोग क्या कहेंगे और हम क्या करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो इंसान खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फील किया कि हम जो खुशियां मांगते हैं जब मिलती हैं तो पहला जुमला ये निकलता है ये कैसे हो गया, ये अल्लाह के हुक्म से हो गया। बहर अल काल वताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फरिश्तों ने कहा अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हैं, इब्राहिम के घर वालों तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। क्या था इब्राहिम के घर में, कितने गज का था, क्या दुनिया का साजो सामान था, लेकिन रहमतों और बरकतों से भरा हुआ घर था। आप इब्राहिम की पूरी जिंदगी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कहीं जाके पढ़ें, अलविदाया नहाय बहुत अच्छी बुक है, बल्कि एक जिल्द में मेरा अहले मकबा कुदूसिया की भी और दारुस्सलाम की भी छुपी हुई कसस अल-अंबिया, कसस नबीयीन के नाम पर, काफी ऑथेंटिक है क्योंकि जब अंबिया के किस्से आते हैं तो उसमें बहुत सारे डर होता है कि कुछ ऐसी चीजें भी शामिल कर दी जाती है जो दुरुस्त नहीं होती, तो ये ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, इनकी आप लेके पढ़ें। हजरत इब्राहिम की जिंदगी पढ़ें, पूरी जिंदगी इन्होंने अपना घर नहीं बसने दिया, अपनी जुबान में कह लें एक जगह टिके नहीं। दो बीवियां थी, सारा भी थी और हाजरा थी, दोनों से असमाए गए, हिजरतें इधर से उधर उधर से इधर, बच्चा हुआ तो उसको उधर छोड़ा है, उधर गए तो फिर उसको देखने जा रहे हैं, कभी कुछ, यानी हजरत इब्राहिम ने कभी भी रूटीन की लाइफ नहीं गुजारी जिसको आप और मैं कहते हैं आप सुकून से बैठेंगे, होम स्वीट होम, नहीं। लेकिन देखिए अल्लाह ताला उनके घर को रहमतों और बरकतों वाला घर कहते हैं। आज भी अगर सच्ची रहमत और बरकत देखनी है तो आप उसी घर में आके देखें कि जहां दोनों को अल्लाह ताला ऐसे जोड़ सबके बना दे कि जो शोहर और बीवी एक ही कॉज पे काम कर रहे हो, एक ही धुन सवार है कि अब क्या, अब क्या, अब किधर, अब क्या। मर्दों को नमाजों की पड़ी हुई है और औरतों को अल्लाह के दीन की पड़ी हुई है। फिर आप देखिए कि वहां जो खुशी बनती है उसका जिक्र अब आपको इनायतों में दिखेगा। का इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह नहायत काबिले तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बिशारत से इनका दिल भी खुश हो गया, तो उन्होंने कौमे लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में इब्राहिम बड़े हलीम और नरम दिल आदमी थे और हर हाल में हमारी तरफ रजू करते थे। ये तीन खूबियां लिख लें, हिल्म, नरम दिली और हर हाल में अल्लाह की तरफ रजू। ये अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें दिलाती हैं। देखिए, एक होता है इल्म, लिखिए जरा, आपको इल्म मिला। अगर सिर्फ इल्म मिले और हिल्म ना मिले ना, तो तबाही है, तकब्बुर है। जिनको सिर्फ इल्म मिलता है ना, वो दिन ब दिन सख्त होते हैं, स्टबन, नए कपड़े की तरह, अकड़ी हुई चादर की तरह, कहते अब तो इल्म मिल गया, अब तो कुरान पढ़ लिया, अब तो हमने और भी डिग्री ले ली। लेकिन अगर इल्म के साथ हिल्म डाल देना, आजजी, नरमी, सॉफ्टनेस, तो वो असल में फिर काम की चीज तब बनती है। और नरम दिली, नरम दिल शख्स के सिवा कोई बंदा अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए वक्फ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह के बंदे कितने प्यारे हैं। अपने लिए दुआ करते हैं हम सब, अल्लाह मेरा दिल नरम कर दे। और नरम दिल क्या होता है? गुनाहगारों को देखकर रोना आ जाए कि अल्लाह ये आग में जाएंगे। किसी काफिर को राह चलता देखकर एकदम आंसू आ जाए कि अल्लाह ये आग में जाएगा। और सख्त दिली क्या होती है? ये काफिर, हाँ ये जहन्नमी, हाँ ये फुला, देखना अल्लाह इनसे पूछेगा। इतना सख्त आपका दिल है कि आप किसी को जलता देखें और आप खुश हो? नहीं। और फिर उसी के साथ अल्लाह की तरफ रजू। और ये तीन खूबियां थी जिसने इब्राहिम को अल्लाह के यहां मुकाम दिलाया। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उनसे कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे बाज आ जाइए, आपके रब का हुक्म हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। फिर जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, ये कौन थे? भतीजे थे इब्राहिम के। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने इनको करीब एक और बस्ती थी सदूम नाम की, उसमें नॉमिनेट कर दिया। अब वो कौम थी होमोसेक्सुअल, गेइज्म था वहां। और इब्राहिम को खुशखबरियां दी जिन फरिश्तों ने, अब वही यहां अजाब की खबर लेके जा रहे हैं। और इब्राहिम की ये बेचैनी क्या थी कि वहां तो लूत है, मेरा भतीजा, तो अगर उस बस्ती पे अजाब आ गया तो उनका क्या होगा? इसी वाक्य को आगे देखते हैं। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो इनकी आमद से वो बहुत घबरा गए और दिल तंग हुए और कहने लगे कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेख्तियार इनके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वैसी ही बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये आपके लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील न करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये भी जानता है कि हम क्या चाहते हैं। देखिए, लस्ट जब सर पे चढ़ती है ना, जब जज्बात दिमाग के ऊपर सवार होते हैं, तो जुबान कितनी गंदी हो जाती है। कहेंगे हमें औरतों से कुछ नहीं लेना, तुम्हें पता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन। लूत ने कहा, काश मेरे पास कोई ताकत होती तो तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता और इसकी पनाह ले लेता। तब फरिश्तों ने इससे कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो याल को लेकर निकल जाओ, और देखो तुम में से कोई पलट कर पीछे न देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा, तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया, यानी ऊपर से नीचे, अपसाइड डाउन कर दी, और इन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के हाँ निशान जदा था, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं। ये थी कौमे लूत। मैं सोचती हूं कि अगर अल्लाह ताला का यही कानून आज भी होता, तो आज मैं और आप भी यही गवाहियां दे रहे होते कि जमीन के किन खित्तों पे ये अजाब आए और ये लोग बर्बाद हो गए। स्टबन औरतों में इनको दिलचस्पी नहीं रही, अपने घर के ऊपर झंडे लगा रखते थे। हजरत लूत की बीवी का जिक्र आया तो समझ लीजिए कि नबी की बीवी कभी भी फाहिशा नहीं होती, जानिया नहीं होती, उसकी मोहब्बत और उसकी हमदर्दी अपनी कौम से थी। हजरत लूत जो के दूसरी बस्ती से वहां गए थे ना, असल में तो ये बैतुल मकदस के ही राही थे, हजरत इब्राहिम के रिश्तेदार थे, लेकिन इनको जब सदूम में भेजा तो आप कह लीजिए कि दूसरे बस्ती में गए। वहां से इनकी शादी हुई जब बीवी से, तो बीवी को अपना खानदान और बिरादरी अजीज थी। जब उसकी कौम में ये बुराई पैदा हुई तो ये क्या करती थी, जब कभी कोई खूबसूरत मर्द या लड़के इनके घर के इर्द गिर्द होते तो वो अपनी कौम को इशारे कर देती थी कि घर में लड़के आए हैं। यानी शौहर के मिशन में शामिल होने की बजाय मैके की मोहब्बत का दम भरती रही। अल्लाह ताला ने उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। आज तो मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज आज मैं कहती हूँ तो मैं फिर रुक जाती हूँ, क्योंकि ये बात भी अब सुनते सुनते थोड़ी सी 10-12 साल से तो हम लोग भी ये लफ्ज सुन रहे हैं ना, दुनिया में इससे पहले तो सुना भी नहीं था। और सहाबा किराम कहा करते थे कि अगर कुरान में कौमे लूत का किस्सा ना होता तो हम कभी मानते भी ना कि ये पॉसिबल अमल भी है कि नहीं। खिलाफ फितरत, खिलाफ अकल, आप किसी एंगल में भी देख लीजिए ये फितरत के भी खिलाफ है, मेडिकली भी बिल्कुल अकल में ना आने वाली चीज है। लेकिन शैतान किस तरह नाचता है, आज तो ऐसे लगता है हर चीज का एंड ये है। आप में से किसी ने कुछ शेयरिंग की थी, आप खुद सुना दीजिए।
वालेकुम। रिसेंटली अभी कपल ऑफ डेज की बात है कि मेरे हम लोगों के सबका एक फोन पे एक म्यूजिक का आइकॉन रहता है ना, म्यूजिक ऐप का वो रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो म्यूजिक सुनता नहीं, मैंने तो कभी इसको ऑन भी नहीं करा क्योंकि मैं म्यूजिक नहीं सुनती। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे से कहा कि सुनो तुम इसको डिलीट कर दो, इसमें ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड सॉन्ग्स होते हैं ना, हम सबके आईफोन में आपको घर जाके चेक कर सकते हैं। तो जब मेरे बेटे से कहा कि इसको डिलीट कर दो इस ऐप को, तो उसने कहा कि अबू दीज सर्टन एप्स कैन नॉट बी डिलीटेड। तो अहमद ने मेरे हस्बैंड ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जैन कहा कि ये सारे गेज वाले सॉन्ग्स हैं और ये प्री डन है आपके फोन पे, यू कैन नॉट डिलीट इट अंटिल यू डाउनलोड देम, वंस यू डाउनलोड देम देन यू कैन डिलीट इट। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ कि इट्स अ हिडन कैंपेन, इट्स नॉट इवन हिडन एनीमोर, बहुत बड़े पैमाने पे। तो हम लोग सब आप लोग अपने घर जाके खुद अपने फोन पे चेक करें, अपने बच्चों से भी बातें करें इस बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे ये सब स्कीम चल रही है ना हमारे बच्चों के लिए, और ये इतनी आम चीज है। क्यों किया जा रहा है ये सब, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये हमारे बच्चे इस माहौल में जब ग्रो अप हो रहे हैं, डू यू थिंक उनके बच्चों को इसकी तो अहमियत रहेगी, ये सब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। तो 11 सॉन्ग्स अभी उन्होंने मैंने देखा, इसमें 11 सॉन्ग्स हैं जिसमें से चार सारा के सारे 11 सॉन्ग के जो पिक्चर्स है ना, वो या तो 2 guys हैं या 2 girls हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग के फोन में डाउनलोड है
जी, अल्लाह तआला हिदायत दे। आप अब देखिए कि अब ये चाहे सबके साथ मैटर है कि नहीं, हर एक का फोन फर्क हो सकता है, सेटिंग फर्क हो सकती है, कुछ भी, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो रियल है। क्या बता रहा है, हर तरह से आज जहनों को पाक कर दो कि ये सोखे, इस पे बात करे ही कोई ना, ताकि लोगों को एक दफा जानवरों की तरह फ्री सेक्स पे ले आओ तो बाकी सारे काम आसान हो जाएं। तो क्या ये अल्लाह के अजाबों को बुलाने वाली बातें नहीं है? अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तआला हम सबको ऐसे फितनों से महफूज रखे, और इसीलिए सूरत यूसुफ पढ़ने की जरूरत है कि उसमें इन्हीं फितनों का रद्द है। कोई बाहर से हम पाबंदियां नहीं लगा सकते, हमें अपने बच्चों के अंदर से दीवारें उठानी पड़ेंगी तकवा और एहसान की, वरना वो कभी आपके मेरे डर से कोई गुनाह छोड़ भी देंगे, जो ही मौका मिलेगा उसको छोड़ देंगे, और अल्लाह ताला बचा के रखे कि खत्म हो गए उनके किस्से कहानियां, अब उनकी कोई बात भी ना यहां करें।